मेरे ऊर्जावान नौजवान साथियों नमस्कार। आज 20 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मित्रों आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके स्वागत के बाद आज मैं आप सबकी ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बधाई देना चाहूंगा गुड्डू कुमार को जो बिहार के हमारे सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने एक मेल के द्वारा मुझे सूचित किया है और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो उनके बैच के उनके साथी रहे हैं कि आप सब शायद गुड्डू के नाम से परिचित होंगे जिन्होंने एक बहुत टैंक जैसा एक भेंट भी आप सबकी तरफ से मुझे दिया था जो आर्मी में है और जो आतंकवाद और नक्सलों के खिलाफ मुकाबले में काफी जिनके पास जीवंत अनुभव था उन्होंने आपको सुनाया भी है। उन्होंने एक सूचना ये दी कि अभी 14 अप्रैल को ही आर्म्ड फोर्स कोर एंड स्कूल है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा स्टैंडर्ड अवार्ड्स दिया गया। उस स्टैंडर्ड अवार्ड्स के लिए जब राष्ट्रपति जी वहां आए थे तो जो गुड्डू है वो पहले छुट्टी पर जाने वाले थे लेकिन जब उन्हें पता लगा कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी और बाद में जो उनको उनके जो सीओ थे उन्होंने फिर उनको राष्ट्रपति जी की पर्सनल सिक्योरिटी में शामिल किया। तो ये उनके लिए बहुत ही एक लाइफ टाइम का मैं समझता हूं कि एक अच्छा एक बहुत ही सुनहरा अवसर था कि वो राष्ट्रपति जी के साथ रहे उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में रहे ढेर सारे उनके अनुभव जुड़े राष्ट्रपति जी से उन्हें हाथ मिलाने का बातचीत करने का उन्हें मौका मिला। तो गुड्डू आपकी इस सफलता के लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और भविष्य की और बेहतर सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों तो अब आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं न्यूज एनालिसिस पर। मैं सबसे पहले कुछ न्यूज के बारे में आपसे बातें करना चाहूंगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के न्यूज काफी कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते थे। एक तो जो सबसे बड़ी खबर है फ्रेंड्स वो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवादित मामला है जो 1992 की घटना है दिसंबर की घटना और जब भी यह बात आती है तो मुझे वह सुबह याद आ जाती है जबकि मैं राष्ट्रपति जी के सेक्रेटरी और शंकर दयाल शर्मा जो उस समय राष्ट्रपति थे उनके कमरे में बैठे हुए किसी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे थे कि अचानक बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की खबर आई और देखते ही देखते पूरा का पूरा माहौल सन्नाटे से भर गया था वो क्योंकि बहुत ही कह लीजिए कि एक दुखद खबर थी और राष्ट्रपति जी के चेहरे पर जो उस समय दुख की जो लकीरें थी वो मैं पढ़ सकता था लेकिन वो पूरी तरह से अपना संतुलन बनाए हुए थे। खैर वो एक अलग मामला है। मित्रों इस न्यूज में आपने सुना कि उस विवादित ढांचे को गिराए जाने के विरुद्ध आपराधिक मामला फिर से कुछ लोगों पर सुनवाई होगी जिनमें हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं मुरली मनोहर जोशी हैं उमा भारती जी हैं इन सबके नाम उसमें आपने सुने। उसमें आपने ये भी सुना कि कल्याण सिंह जी जो उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जब यह घटना घटी थी उन पर यह मामला अभी नहीं चलेगा क्योंकि वे अभी राज्यपाल हैं। अब क्या स्थिति होती है वो आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर जो डिसीजन दिया है वो एक बहुत ही कह लीजिए कि इस रूप में एक बड़ा डिसीजन है कि और उन्होंने साफ साफ ये कहा भी है कि न्यायालय कानून के समक्ष जो समानता है और न्यायालय की जो विश्वसनीयता है वो बिल्कुल सर्वोपरि है और वो बनी रहनी चाहिए। तो मित्रों ये एक खबर थी। इसको लेकर के अभी किस तरह के सिविल सर्विस में प्रश्न बनेंगे कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता धीरे धीरे स्थापित होती जा रही है इसके प्रति लोगों की जो विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है सर्वोच्च न्यायालय का यूं भी आप कह सकते हैं कि अभी तक तो हम इसके एक्टिविज्म की बात कहते थे न्यायिक सक्रियता की बात कहते थे अब वो आउटरीच की भी बात होने लगी ओवररीच की भी बात होने लगी है कि सक्रियता से भी आगे जाकर के वो काम करने लगी है तो इस तरह की बातें भी होने लगी हैं। तो इससे संबंधित हो सकता है कि कोई प्रश्न आगे चलकर बने। लेकिन एज सच इस घटना को लेकर कि विवादित ढांचे पर आपराधिक मामले को चलाए जाने को लेकर के मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में अभी कोई प्रश्न ऐसा बन नहीं रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो स्टूडेंट है वो पूरे के, क्योंकि अभी अखबारों में आना शुरू होगा अयोध्या मामला जो शुरू से चलता आ रहा है, फिर उसकी बहुत ही डिटेलिंग इस तरह की आनी हो सकती है कि अखबारों में शुरू हो जाए, तो आप सब उसके ग्रिप में मत आइएगा कि आप उनको याद कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस मामले को लेकर के चाहे जो न्यायिक व्यवस्था की बात हो, राजनीतिक स्वरूप की बात हो, भारतीय चेतना की बात हो, लोगों के जीवन की बात हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, इस इश्यू से जुड़े हुए इस तरह के मामले आएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका क्या इतिहास रहा है, जहां तक मैं समझता हूं। मित्रों, जो दूसरी जो बड़ी खबर थी वो लाल बत्ती जो वीआईपी संस्कृति है उसके उसको खत्म करने की खबर थी। आपको मालूम है कि हर बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि ये जो बत्ती है, जो लाल बत्ती का जो मामला है, इसको अब 1 मई से खत्म कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा दिन चुना गया है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और उस दिन लाल बत्ती को समाप्त करने का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि हम सब बराबर हैं और ये एक प्रकार से इलीट कल्चर जो है, जो अभिजात्य संस्कृति है, जो विशिष्ट संस्कृति है, उसको विदाई देने के प्रतीक के रूप में है। इस बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो निर्णय लिया गया है ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, ये केवल लाल बत्ती के जाने का निर्णय नहीं है, है ना, ये एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के ईगो को, पॉलिटिशियंस के ईगो को कंट्रोल करने का निर्णय भी है, उन्हें पब्लिक के समान बनाए जाने का भी निर्णय है, सही मायने में उन्हें सेवक के रूप में दिखाए जाने से संबंधित निर्णय है। ये बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर राजनेताओं की गाड़ियों से उतर जाते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ी से उतरेंगे ही, और अगर ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ी से उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में उनको लेकर के जो एक आतंक होता है, एक भय होता है, एक दूरी वो उनसे महसूस करते हैं, वो दूरी डेफिनेटली कम होगी। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो अभिजात्य संस्कृति है, जो इलीट कल्चर है, इस पर ऐसे की दृष्टि से आपको विचार करना चाहिए। ऐसे के लिए ये काफी मुझे एक बहुत ही सुटेबल, बहुत ही अच्छा और सामयिक विषय मालूम पड़ रहा है। मित्रों, इसके बाद एक जो खबर थी वो वीवीपीएटी मशीन को लेकर है कि कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि 16,15,000 मशीनें खरीदी जाएंगी। ये जो वीवीपीएटी है, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। सच पूछे तो ये एक ऐसी मशीन होगी जिसको, जो वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। अगर आपने टीवी न्यूज देखी हो तो उसमें उसको बकायदे दिखाया भी जा रहा था, जैसे वोटर वोट डाल देगा। देखिए, आपको केवल इतना जानना है कि जैसे वोटर ने वोट डाला, एक बटन दबा देगा, तो बटन के दबते ही इसमें से एक पर्ची निकलेगी, मतलब वीवीपीएटी से एक पर्ची निकलेगी। वो पर्ची केवल 7 सेकंड के लिए रहेगी और उसमें जो पर्ची निकलेगी उसके स्क्रीन पर यह दिखाई देगा कि आपने वोट जिसको डाला है उसी को वोट मिला है या नहीं मिला है, यानी कि मतदाता ने जो वोट दिया है वो उसको वेरीफाई कर देगा। बस बाद में अगर कोई सवाल उठाता है कि ऐसे मशीन में हेरा फेरी की गई है या वो की गई है, तो उससे बकायदे इस वीवीपीएटी की प्रणाली से उस चेकिंग हो जाएगी कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। आपको मालूम है कि वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के कुछ सवाल उठे थे, उसी से संबंधित यह है। तो इस पर मैं आपको दैनिक भास्कर का एक न्यूज आइटम भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है, वो आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए क्योंकि साइंस से जुड़ा हुआ थोड़ा सा मामला है। दोस्तों, रेडियो न्यूज में तो बस इतनी ही बातें थी। विजय माल्या जी का तो मामला चल ही रहा है, हम लोग कभी बात करेंगे उन पर, खासकर क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर के, वो मुझे याद है। एक खबर और है दोस्तों जो अखबारों में है, न्यूज में नहीं थी, वो ये है कि अब जो अंधत्व है, ब्लाइंडनेस, तो भारत सरकार ने अब ब्लाइंडनेस की जो डेफिनेशन है वो बदल दी है। जो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर की दूरी से उंगलियों को नहीं गिन पा रहा है 3 मीटर की दूरी तक, तो वो ब्लाइंडनेस में आएगा। 3 मीटर की दूरी, अभी तक हमारे यहां जो डेफिनेशन दी गई थी वो 6 मीटर थी, मतलब डबल थी। अब भारत सरकार ने भी उसे घटा करके 3 मीटर की दूरी तय कर दी है। तो ये प्री एग्जाम में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपसे इसकी चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, अब मैं न्यूज पेपर की बात अलग से नहीं करूंगा, न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं यूपीएससी के इंटरव्यू पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको लेकर। बहुत से स्टूडेंट ने याद दिलाने की कोशिश की है कि सर आपने वायदा किया था। नो डाउट मैंने वायदा किया था और मुझे याद है, और फिर जब वायदा किया है तो फिर उसे निभाना ही पड़ेगा, मैं निभा रहा हूं। मित्रों, मेरे पास जो मेल आए हैं उसमें एक इंटरव्यू आया है महेंद्र गौड़ जी का, जो इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे, और खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को बहुत से इंटरव्यू सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को अखबारों में मिलते हैं। इंटरव्यू को आप ज्यों का त्यों मत लीजिएगा, उस इंटरव्यू को आप अपने पर अप्लाई मत कीजिएगा ज्यों का त्यों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो इंटरव्यू पूछ लिया गया है जिस स्टूडेंट का, उसकी बैकग्राउंड को आप पूरी तरह नहीं जानते। हां, अगर पूरी तरह से बैकग्राउंड को जानते हैं तब आप उसके इंटरव्यू के साथ न्याय कर सकते हैं, जो इंटरव्यू उसका लिया गया है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जो बातचीत की शुरुआत होती है इंटरव्यू में, वो कहां का रहने वाला है पहली बात, किस स्टेट का, स्टेट के बाद किस जिले का, किस पृष्ठभूमि से है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में उसके क्या सब्जेक्ट थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या थे, क्या उसने रिसर्च की है, क्या वो नौकरी कर रहा है, आईएएस में उसका कौन सा सब्जेक्ट रहा है, ये ढेर सारी चीजें हैं जो उसके इंटरव्यू की पृष्ठभूमि को तैयार करती। तो उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी उस पृष्ठभूमि से पूछे जा रहे हैं। अगर हम बहुत ही कॉमन जनरल स्टडीज को छोड़ दें तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो एरिया स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें आप अपने दिमाग पर बोझ न बना लें कि अरे बाप रे हमसे भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो महेंद्र गौड़ का जो मैं इंटरव्यू अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, और राजस्थान में भी जो उन्होंने जिला जो दिया हुआ है वो एक आगे आकर के मुझे पता लगेगा, चलिए मैंने देखा है कि, और वो ब्राह्मण समाज से वो हैं, देखिए ये भी मुझे एक जगह मिल गया है। तो स्वाभाविक है कि उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे आपके हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो जोधपुर के, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उनसे जोधपुर के ऊपर प्रश्न पूछे गए, अरे तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखिएगा। तो अब जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों, वो मैं केवल आपको क्वेश्चंस सुना रहा हूं बस। उनसे पूछा गया, हार्ट ऑफ एशिया के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, ग्रीन बैंकिंग क्या है, इसको बढ़ावा देने के कारण बताइए, G20 फोरम क्या है, क्या यह अपने हितों को साधने में सफल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में सुधार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, भारत चीन के संदर्भ में बताइए, भारत के फार्मा क्षेत्र में चीन के लिए क्या संभावनाएं हैं, समान नागरिक संहिता को आप एक जिला कलेक्टर के तौर पर किस रूप में देखते हैं, 3 तलाक व लव जिहाद क्या है, धर्म क्या है, कार्ल मार्क्स व गांधी के संदर्भ में बताइए, जिला कलेक्टर के पद पर आसीन होने के बाद आप महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा को कैसे रोकेंगे, यह भी बताइए कि राजस्थान में आपके ब्राह्मण समाज में कितनी लड़कियां अपनी इच्छा से शादी कर पाती हैं, नेपाल की शांति व स्थिरता के लिए वहां के संविधान ने ही किस प्रकार वहां की सत्ता में भूचाल ला दिया है, केंद्र सरकार ने जिंस बाजार नियामक, वायदा बाजार आयोग का विलय पूंजी बाजार नियामक सेबी में कर दिया है, इस विलय का क्या प्रभाव पड़ेगा, वित्त सचिव के नजरिए से जवाब दीजिए। मतलब उन्होंने मान लिया है कि आप आगे चलकर वित्त सचिव बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, जीएम फसलें एवं उसमें प्रयुक्त कीटनाशक किसानों के लिए किस प्रकार अहितकर है, सफेद मक्खी भारत के किन राज्यों में फसल को नुकसान पहुंचा रही है, आपके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आईएएस बनना ही है या राजनीतिक रूप से संसद में जाना भी पसंद करेंगे, आपके गांव से आज तक कितने व्यक्ति एमपी बने हैं, क्या उसमें महिलाएं भी हैं? महेंद्र जी, आपके बाड़मेर के महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपना कैरियर एक साधारण सैनिक से होते हुए वित्त, विदेश, रक्षा मंत्री तक का गौरव हासिल किया, आप जैसे युवा उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं? अकबर और महाराणा प्रताप में से महान कौन है? हल्दी घाटी गए हैं आप कभी? 1994 में आपके बाड़मेर में मुझे कलेक्टर के पद पर रहने का मौका मिला था, ये मेंबर पूछ रहे हैं, तब शायद आप दूध पीते बालक होंगे। उस समय मैंने एक बात नोटिस की थी कि महिला चाहे ग्रामीण हो या शहरी अपने पति का नाम कभी नहीं लेती थी, चाहे घर में कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या प्रथा रही होगी? आप अपनी पत्नी से क्या उम्मीद रखेंगे? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो निजी प्रश्न पूछ रहे हैं। अफ्रीका के रवांडा के गाली में हुए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित ऐतिहासिक समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से किस प्रकार संबंधित है? पिछले काफी समय से अमेरिका में भारतीय परिवार नस्लवादी हिंसा को लेकर परेशान हैं। अगर आपको राजदूत के रूप में अमेरिका जाना पड़े और समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और आपको बात करना पड़े तो आपकी बातचीत के क्या बिंदु होंगे? और अमेरिकी संविधान का हवाला देते हुए आप यह बात बताइए। 2006 के आसपास बाड़मेर में बाढ़ आई थी। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद कई माह तक मिट्टी पानी क्यों नहीं सोख पाई? कल्पना कीजिए कि यदि आप वहां कलेक्टर होते तो आप जनता को तत्काल राहत दिलाने के लिए क्या करते? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? आईपीसी की धारा 177 में किस बात का उल्लेख है? क्या भारत में वैश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए? अक्सर सिविल सेवक अपनी जीवनी लिखते हैं, बेशक आप भी लिखेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि उस किताब का नाम क्या होगा? राजस्थान की प्रमुख समस्याओं में राजनीति के समय जातिवाद और बाल विवाह हैं। आप कलेक्टर के रूप में इसको रोकने के क्या उपाय करेंगे? क्या कारण है कि लूड़ी नदी बालोतरा के पास लवणयुक्त हो जाती है? पश्चिमी राजस्थान में सीमा पार तस्करी और नशाखोरी को आप जोधपुर कमिश्नर के तौर पर किस प्रकार रोकेंगे? अच्छा, अगर आज आप सेलेक्ट होते हैं और 20 साल के बाद इंटरव्यू लेकर के किसी को कलेक्टर बनाएंगे तो बताइए कि आप उम्मीदवार से क्या क्या सवाल करेंगे? कोई चार प्रश्न बताइए, लेकिन विचारों प्रश्न ऐसे हों जो हमने आपसे नहीं पूछे हैं। अंतिम सवाल यह कि आप आरक्षण को किस रूप में देखते हैं? क्या आरक्षण सवर्णों की भी जरूरत है? तो मित्रों, मैंने ये आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं, आप इन प्रश्नों को अपने ढंग से एनालाइज कर सकते हैं और आप पाएंगे कि देखिए कुछ प्रश्न तो बहुत ही सामान्य जनरल स्टडीज के हैं जो हर स्टूडेंट पढ़ता ही है, करंट अफेयर्स से है। आपने एक बात महसूस की होगी, इस बात की मुझे बेहद खुशी है, आत्मसंतोष भी हमारी एकेडमी को, कि करंट अफेयर्स पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबके सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बकायदे इस डेली ऑडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं और प्रोमिनेंटली डिस्कस किए हैं, ये नहीं कि बिल्कुल चलताऊ तरीके से ही डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, इसके जरिए मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि जो सिविल सर्विस में, चाहे वो प्री एग्जाम हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, उसकी बकायदे एक मर्यादा होती है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस मर्यादा और उन सीमाओं के अंतर्गत ही होते हैं। बस आपको वह दृष्टि चाहिए जो इन मर्यादाओं को समझ सके, लिमिटेशंस बना सके, और खासकर ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है उसी मर्यादा और सीमाएं बनाने की क्षमता पैदा करने का एक मेरा विनम्र छोटा सा प्रयास है। तो मित्रों, ये थे आज के न्यूज एनालिसिस के बारे में, न्यूज पेपर्स के बारे में, और अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, वो है ईमेल का चरण। एक सूचना है जो मेरे पास अमन गुप्ता ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने भेजा है। उन्होंने बताया है कि आज नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर रात के 9 बजे इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण के प्रभाव पर कोई प्रोग्राम आना है। मैं समझता हूं कि चूंकि टॉपिक अच्छा है तो आप लोगों में से जो भी इसे देख सकता हो, सुन सकता हो, देखने की कोशिश कर सकते हैं। अमन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो स्टूडेंट हैं, ऋतिक रोशन जो नवादा बिहार से हैं और निर्मल सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, उन्होंने लिखा है कि वे afis.com के बारे में लोगों को खबर दे रहे हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ऋतिक और निर्मल, इसके लिए मैं एकेडमी की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद और उनके प्रति आभार। इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अमन कुमार बीएचयू से, अंकित वर्मा, अरुपमा शुक्ला, ईशु शर्मा दिल्ली से, ब्रजकिशोर मिश्रा इलाहाबाद यूपी से, अनुराग गुप्ता, शाश्वत अग्रवाल, अंकिता तिवारी आरा बिहार से, सचिन अड़गांवकर अकोला महाराष्ट्र से, आशीष मिश्रा दरभंगा बिहार से, मनीषा पाल भोपाल से, अनूप लाहौरिया अनूपपुर मध्य प्रदेश से, किशन मेवाड़ा पालीताना गुजरात से, सूर्य प्रताप सिंह, जितेंद्र सोनी आगरमालवा मध्य प्रदेश से, राहुल उपाध्याय न्यू दिल्ली से, सुधीर पासवान पटना बिहार से, बाल मुकुंद पासवान, धीरज कुमार बेगूसराय बिहार से और पिंटू कुमार पटेल बीएचयू यानी कि वाराणसी से। तो मित्रों, इसी के साथ ही आप सबको आभार व्यक्त कर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं और इस ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।